آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
میانمار میں سینا کے خلاف بڑھا وشو نیتاؤں کا دباو، انگلینڈ میں نئے کورونا اسٹرین کے چلتے پرتبندھوں کا بڑھنا جاری، اور کرکٹ لیجنڈ مرو ہیوجز آسٹریلین کرکٹ ہال آف فیم میں شامل۔ اب خبریں وستار سے۔ सेना के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू और अन्य वरिष्ठ राजनेताओं को हिरासत में लेने के बाद विश्व नेताओं का म्यांमार की सेना पर दबाव बनना जारी है। सेना के प्रमुख विभागों के 24 मंत्रियों और डेप्टियों को हटा दिया गया है और 11 मंत्रियों को नामित किया है, ये कहते हुए कि वो अगले 12 महीनों तक नए चुनाव से पहले शासन करेंगे। सैन्य जनरलों का कहना है कि नवंबर के चुनाव के दौरान कथित धोखाधड़ी के कारण उन्हें कार्य करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसे सू की पार्टी जीत गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन म्यांमार पर प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन जुरारिक, उनका कहना है कि दोनों पक्षों के बीच किसी भी मतभेद को शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए।
These developments represent a serious blow to democratic reforms in Myanmar. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform.
आपको बता दें कि 15 सदस्यीय यूएन सुरक्षा परिषद की आज यानी कि 2 फरवरी को एक बंद बैठक में म्यांमार की स्थिति पर चर्चा करने की योजना है। ऑस्ट्रेलियाई बायोटेक कंपनी ने अमेरिका के साथ होम कोविड-19 परीक्षण किट देने का एक बड़ा सौदा हासिल किया है। अमेरिकी सरकार के साथ ब्रिस्बेन की कंपनी एल्यूम ने $303 मिलियन ऑस्ट्रेलियन मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इस किट को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है। इस राशि के साथ कंपनी को दिसंबर तक प्रतिदिन 6,40,000 परीक्षणों द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एल्यूम के मुख्य कार्यकारी शॉन पार्सन्स ने 9 नेटवर्क को बताया कि कंपनी की परीक्षण किट 15 मिनट में परिणाम प्रदान कर सकती है।
The accuracy is 96% overall. We have an authorization for testing people with symptoms and without symptoms, and we're the only at-home test which is authorized for that use. We need to be able to pick up the asymptomatic people to help reduce the spread of COVID, and that's a big part of what our product is about.
आपको बता दें कि ये उत्पाद फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। एक लेबर सांसद ने चेतावनी दी है कि लिबरल क्रेग केली सोशल मीडिया के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पर गलत सूचना दे सकते हैं। फेडरल विपक्ष क्रेग केली के फेसबुक पेज के माध्यम से गलत सूचना के प्रसार से चिंतित हैं। श्रमिक नेता एंथनी एल्बनीज को डर है कि केली का व्यवहार टीकाकरण में बाधा के साथ लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकता है। मार्क बटलर प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें इस बात की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि वो केली को राष्ट्रीय कोविड-19 अभियान को बिगाड़ने से रोकें।
At some point, the Prime Minister needs to act. Of course, I'm concerned about the amplification. I don't do this lightly. Anthony Albanese doesn't do this lightly. But this fellow has a social media through Facebook reach that's vastly greater than the Department of Health's Facebook reach.
संसद के फिर से शुरू होने के बाद विक्टोरिया के विपक्षी नेता कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बारे में राज्य सरकार से जवाब मांग रहे हैं। राज्य की आपातकालीन शक्तियों को दिसंबर के मध्य से 27 दिनों के बाद बिना किसी स्थानीय रूप से अधिकृत कोविड-19 मामलों के बढ़ाया जा रहा है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज का कहना है कि सरकार को कानूनी ढांचे की आवश्यकता है और वो होटल संगरोध को बनाए रखने के लिए अपने अधिकार का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ेगी। लिबरल्स के नेता माइक ओब्रायन का कहना है कि विक्टोरियन अभी भी राज्य के होटल संगरोध कार्यक्रम में सुरक्षा गार्ड के उपयोग के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के होटल संगरोध व्यवस्था को चलाने वाले नौकरशाह जोर देकर कह रहे हैं कि कोविड-19 से ग्रस्त अन्य स्थानों पर जाने वाले सुरक्षा गार्ड के रूप में उनसे कोई गलती नहीं हुई है। अभी तक ये साफ नहीं पाया गया है कि 20 से 30 साल के उम्र के इस सुरक्षा गार्ड को यूके कोरोना वायरस वेरिएंट कैसे हुआ, जिसकी वजह से प्रीमियर को 5 दिन का लॉकडाउन करना पड़ा। इस लॉकडाउन के तहत मेट्रोपॉलिटन पर्थ, द पील और साउथ वेस्ट रीजन के लोगों को घर पर रहना चाहिए और केवल खरीदारी और चिकित्सा की ज़रूरतों सहित आवश्यक चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। इंग्लैंड के 8 अलग अलग क्षेत्रों में 11 लोगों ने दक्षिण अफ्रीकी संस्करण कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जो उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखते जिन्होंने विदेश यात्रा की है। अब ये आशंका बढ़ गई है कि अधिक खतरनाक संस्करण देश में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से अधिकारी इस इलाके में हर व्यस्क से टेस्ट कराने की अपील कर रहे हैं, चाहे उनमें कोरोना वायरस के लक्षण हों या नहीं। प्रभावित क्षेत्रों में से 3 लंदन के, 2 साउथ ईस्ट के, 1 सेंट्रल इंग्लैंड के, इंग्लैंड ईस्ट इंग्लैंड और नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक का कहना है कि अफ्रीकी संस्करण को देखते हुए ये जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दें।
There's currently no evidence to suggest this variant is any more severe, but we need to come down on it hard, and we will. We've already made sure that all these cases are isolating and that we've done enhanced contact tracing of all of their close contacts. We're surging extra testing into the areas where this variant has been found and sequencing every single positive case.
अब खबरें भारत से। केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि ये बजट ऐसे समय में आया है जब सभी को अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक साथ आना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर पर खास ध्यान दे रही है।
All of us desire to give greater impetus to the economy, and that impetus we thought would be qualitatively spent and give the necessary demand push. That is why if there are two important feature of this budget, it is that we chose to spend big on infrastructure, which spans across roads, bridges, ports, power generation, and also to, as a second feature, attend to the need of the health sector. Capacities for better health management had to be brought in.
भारत में बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए रक्षा बजट पर सवाल उठाए, लेकिन यूनियन मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर वार करते हुए इसे बचकानी हरकत कहा।
ता शायद बजट ना उन्होंने ढंग से सुना ना उन्होंने ढंग से पढ़ा। जब तक चीन की वो बात करते हैं, शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ठ संबंध रहे। ये भी कहना उचित है कि प्रधानमंत्री अगर देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं, जिसमें देश के प्रतिनिधि बन के वो देश की फौज को ये कहते हैं कि उत्सव के माहौल में हम भी बॉर्डर के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है ऐसे देशव्यापी कहीं ना कहीं एक धारणा या फिर एक फीलिंग को व्यक्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उसकी अवहेलना अगर राहुल गांधी करते हैं तो मुझे लगता है बड़ी बचकाना पॉलिटिक्स है।
अब डालते हैं डॉलर पर नजर। अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.68 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 76 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के सदस्य 6 दिन चले एकांतवास के दौरान हुए 3 कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, जिसकी वजह से शुक्रवार को भारत के खिलाफ शुरू हो रहे पहले टेस्ट से 3 दिन पहले टीम के पहले ट्रेनिंग सेशन का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि श्रीलंका दौरे पर नहीं जाने वाले बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और रॉरी बर्न्स एकांतवास में पहले ही रह चुके हैं और अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मर्व ह्यूजेस को राष्ट्रीय क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ह्यूजेस का जन्म विक्टोरिया में हुआ था और उन्होंने 28.38 की औसत से 212 टेस्ट विकेट हासिल किए। उनका कहना है कि वो अपने परिवार के समर्थन के लिए आभारी हैं और 1989 का एशेज टूर उनके करियर का मुख्य आकर्षण है.
To come in alongside some of the names that are in there, it's a little bit overwhelming and obviously a little bit emotional, but just very, very happy with it. So to the Cricketing Hall of Fame, to the MCC, to Cricket Australia, to the Australian Cricket Association, very much appreciated.
और अब सुनते हैं मौसम का हाल. और अब बात करते हैं कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की. शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां पूरे दिन धूप खिली रहेगी. अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस. एडिलेड के आसमान में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे. अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस. मेलबर्न में आसमान साफ रहेगा. यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस. मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहाँ ज़्यादातर मौसम साफ रहेगा. यहाँ के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस. अब बात करते हैं सिडनी की, जहाँ आसमान में हल्के बादल ज़रूर रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है. यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस. ब्रिस्बेन में हल्की बारिश की संभावना है. यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस. डार्विन में बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है. तापमान रहेगा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस. अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की. यहाँ का तापमान रहेगा अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस. इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं. बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं. वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi.
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहाँ आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ हम हैं.